नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभी तक एक भी टिकट नहीं दिया। कहा जा रहा है कि गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट में जारी रस्साकशी की वजह से प्रत्याशियों के ऐलान में देरी हो रही है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बड़ा बयान आया। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के करीब करीब सभी टिकट क्लियर हो रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आलाकमान का फैसला जो होगा वह सबको स्वीकार होगा। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ मतभेदों पर कहा कि उन्होंने भूलो और माफ करो की नीति पर अमल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे, तो एक घुड़सवार दल उनकी अगवानी करेगा और स्कूल में उनके स्वागत में एक बैंड प्रस्तुति देगा। स्कूल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री इस मौके पर स्कूल की इतनी वर्षों की यात्रा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और 5,000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे। स्कूल के शासी मंडल के अध्यक्ष और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्कूल के अधिकारियों के अनुसार मोदी उस दिन शाम 4:30 बजे के आसपास ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से एक हेलीकॉप्टर से स्कूल के लिए प्रस्थान करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि एक घुड़सवार दल उनकी अगवानी करेगा और स्कूल में उनके स्वागत में एक बैंड प्रस्तुति देगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगुदेशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि नायडू की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का भी समान रुख है। उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय लेने की उम्मीद है कि नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चिकित्सकों को दिखाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इस बीच विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत 1 नवम्बर तक बढ़ा दी। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और न्यायाधीश BSVH बिंदु ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप के मुकाबले में भारत को शुरू में ही करारा झटका लगा, जब पहला ओवर डालते समय हरफन मौला हार्दिक पांड्या टखना मुड़ने के कारण मैदान से बाहर चले गए। ये घटना 9वां ओवर की तीसरी गेंद की है, जब बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज लिटन दास का स्ट्रेट ड्राइव रोकने के प्रयास में पांड्या को टखने में चोट लग गई। पांड्या को असहज महसूस हो रहा था और दाहिने टखने पर पट्टी बांधने के बाद वह उठे तो भी लड़खड़ा कर चल रहे थे। उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और उनकी जगह फील्डिंग के लिए सूर्यकुमार यादव उतरे। पांड्या का अधूरा ओवर विराट कोहली ने पूरा किया, जिसे देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर को उनकी नियमित जमानत याचिका की सुनवाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किए जाने पर संज्ञान लिया था। पीठ ने 10 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा, मामले को 6 नवंबर 2023 को अपराह्न 3 बजे न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। वहीं पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। उनसे कहा था कि उनके समक्ष लंबित कार्रवाई को सुनवाई में विलम्ब के हथकंडे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाए। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह तीसरी तिमाही की बिक्री तथा मुनाफे में गिरावट के बाद लागत कम करने के लिए दुनिया भर में 14,000 कर्मचारियों या अपने कार्यबल में 16% तक कटौती करने की योजना बना रही है। कंपनी जनवरी दिसंबर के वित्त वर्ष का अनुसरण करती है। कंपनी ने कहा कि इस कदम का मकसद बाजार की मौजूदा अनिश्चितता से निपटने के लिए उसके लागत आधार को कम करना है और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। नोकिया की ओर से जारी बयान के अनुसार कंपनी का मकसद 2026 के अंत तक अपने लागत आधार में 80 करोड़ यूरो से 1.2 अरब यूरो के बीच कमी लाना है। इस कदम से कंपनी के कर्मचारियों की संख्या घटकर 72,000 और 77,000 के बीच रह जाएगी, जो अभी 86,000 है। राजस्व के हिसाब से कंपनी की सबसे बड़ी इकाई मोबाइल नेटवर्क कारोबार की आमदनी 24% घटकर 2.16 अरब यूरो रह गई। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के कारण लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए धार्मिक सहिष्णुता और बहुआस्था दृष्टिकोण के महत्व की वकालत की। महाराजा चार्ल्स तृतीय ने परोक्ष रूप से पश्चिम एशिया में इसराइल गाजा संघर्ष का उल्लेख करते हुए ये टिप्पणी की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।